नीति वचन अध्याय 6। आइए हम नीति वचन अध्याय 6 खोले। अध्याय 6 के उपदेश पिता द्वारा पुत्र को दिए जाने वाले उपदेश है, या आज की भाषा में कहें तो वे परामर्श है। नीति वचन अध्याय 6 पद 1 से लेकर 5 तक। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तो जा, उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। किसी ने कहा है कि दोस्त को खोने का सबसे उत्तम रास्ता है उसे पैसे उधार दे दो। दुनिया में बहुत सी मित्रताएं इसी बात से खत्म हो गई है। यदि आप अपने मित्र के उत्तरदायी हुए हो, यदि आप उसके लिए जमानतदार ठहरे हो कि आपने कह दिया, नहीं तो मेरे नाम लिख देना या मैं जमानत लेता हूं, मेरा पुत्र अब आप समस्या में पड़ गए, आप अपने ही मुंह के वचनों से फंस गए, जैसे भी हो अपने आप को छुड़ा ले, अपने आप को दीन करके स्थिति से निकल जाए। इससे भी अधिक बुरा होगा अजनबी के साथ सौदा करना। जब हम इसराइल में थे, तब हम शुक्रवार को सुबह सुबह भेड़ द्वार पर बड़ा रोचक नजारा देखने जाते थे। वहां गडेरिये अपनी भेड़ों को लेकर बाजार में आते थे। वहां खरीदने और बेचने वाले एकत्र होते हैं। वहां गाड़ियां भेड़ बकरियों से भर कर आती हैं। गाड़ी का दरवाजा खुलते ही सब जानवर और पुरुष उसमें से बाहर निकलते हैं। वे भेड़ों को रॉकफेलर म्यूजियम की दीवार के पास इकट्ठा करते हैं। वहां उन भेड़ों की बोली लगाई जाती है। जब वे आपस में सौदा करते हैं, तब ऐसा लगता है कि वे किसी भी समय चाकू निकालकर एक दूसरे को मार देंगे। उनके द्वारा हाथों का हिलाना ऐसा लगता है कि वे बड़े गुस्से में हैं। खरीदार मुड़कर चल देता है, परंतु कुछ दूर जाकर वो रुकता है, फिर पीछे मुड़कर कुछ चिल्लाता है और आगे बढ़ जाता है, तब फिर रुकता है और पीछे देखकर कुछ चिल्लाता है। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि सौदा तय न हो जाए। तब वे आपस में जोर से हाथ मिलाते हैं और खरीदार अपने बटुए में से पैसा निकालकर भेड़ के मालिक को देकर भेड़ ले लेता है। ये एक अजीबोगरीब नजारा होता है। हाथ मिलाने का अर्थ है सौदा तय हो गया है। मेरे पुत्र, यदि आपने अजनबी के हाथ पर हाथ मारा है, तो आप फंस गए। सावधान रहो, जैसे हिरनी शिकारी के हाथ से या चिड़िया चिड़ीमार के हाथ से अपने आप को बचा लेती है, उसी प्रकार तू बच निकल। ये पहला छोटा सा उपदेश अजनबी के लिए उत्तरदायी होने के विरुद्ध था। और अब दूसरा छोटा उपदेश आलसी के विरुद्ध है। नीति वचन अध्याय 6 पद 6 से लेकर 11 तक। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। ये आलसीपन के विरुद्ध एक छोटा सा उपदेश है। चीटियों के पास जाओ, हम जानते हैं कि सुलेमान एक प्रतिष्ठित लेखक था। उसने 3000 नीति वचन, बहुत से गाने और जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान पर किताबें लिखी थी। वो प्रकृति से बहुत परिचित था। हम इनके बारे में किसी और नीति वचन में पढ़ेंगे जब वो पशुओं और कीटों के बारे में कहेगा। लेकिन यहां वो कह रहा है, चींटियों के पास जा, उनके व्यवहार को देख और बुद्धिमान हो जा। चींटियों को देखना बड़ा लुभावना अनुभव होता है। वे शायद सबसे अधिक मेहनती कीट है। चींटियां कैसे बाहर जाती और भोजन संचय करती है, मुझे उन्हें देखना अच्छा लगता है। मैं आंगन में बैठकर रोटी तोड़कर नीचे फेंकता हूं और देखता हूं कि एक छोटी सी चींटी उसे उठाती है और उसे खींचने की कोशिश करती है। शीघ्र ही दूसरी चींटी आ जाती है और वे दोनों उस रोटी के टुकड़े को उठा लेती है। जब वे अपने खाने को पंक्ति बनाकर ले जाती है, तब उनकी मेहनत देखना एक अच्छा सबक है। आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला। आपको आश्चर्य होगा कि वे संदेश कैसे भेजती है। वे संदेश तो अवश्य भेजती है, क्योंकि आपके घर में जब कुछ होता है, विशेष करके उस समय जब उन्हें कुछ मीठा मिलता है, तब वे अपने संबंधियों अथवा अन्य चींटियों को संदेश भेज देती है और तुरंत ही बहुत सारी चींटियां वहां होती है। मैंने उनकी सूक्ष्मता पर अधिकतर सोचा। सब कुछ उनकी उस सूक्ष्मता में ही है। क्या आपको कभी आश्चर्य होता है कि चींटी का दिमाग कितना बड़ा होता होगा? फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि संदेश भेजने और एक साथ कार्य करने की क्षमता चींटियों में है। मैं समझता हूं कि हमें ये पाठ सीखने को मिलता है कि वे बिना किसी प्रधान के, जो चिल्लाकर आदेश दे, काम करती है। जैसे ही रोटी मिली, मिलकर खींची और शीघ्र ही वे रोटी को खींचकर ले जाती है। आप फर्श पर पड़े रोटी के कणों को उठाकर चलते हुए उन्हें देख सकते हैं। वे कुछ देर कुछ मेहनत करती है और बस, लेकिन आखिरकार वे अपना काम प्रधान और प्रभुता करने वालों के बिना करती है। उनके काम पर ध्यान दे, वे अपना आहार धूप काल में संचय करती और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। आलस से सावधान, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, आगे कंगाली आ जाएगी, ये निश्चित है। आगे वो ऐसे मनुष्य के बारे में कहता है। नीति वचन अध्याय 6:12। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वो टेढ़ी टेढ़ी बातें करता फिरता है, बकवादी मनुष्य। नीति वचन अध्याय 6:13-15। वो नैन से सैन और पाव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलट फेर की बातें रहती। वो लगातार बुराई गढ़ता और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वो पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। वो दुष्ट मनुष्य, भ्रष्ट मनुष्य, जिसके पास दुष्ट मुंह है, अपनी आंख दबाता है। जब मुझे ज्ञात हुआ कि मैं इस पद पर कहने जा रहा हूं, आराधना से पहले मेरी बाई आंख फड़की और अब भी फड़क रही है। मैंने शीशे में आंख का फड़कना देखा। मैंने सोचा कोई नहीं जानता कि मुझे ये पद उन्हें सिखाना है। मेरी आंख फड़क रही है। मैंने विटामिन बी की गोली खाई। मैंने सोचा मुझ में विटामिन की कमी हो गई है या और कुछ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि इसे बंद करता, लेकिन आशा के अनुसार मेरी आंख का फड़कना बंद हो गया। ये आंख का दबाना नहीं है। उस मनुष्य की श्रेणी में मुझे न डाले। एक चीज मुझे पसंद है, जैसे परमेश्वर सदा दुष्टों के बारे में कहता है कि उनका नाश होगा, वो इस विषय में भी कहता है विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। ये कितने दुख की बात है जब परमेश्वर कहे कि मनुष्य के पास कोई उपाय ना रहेगा, तो समझ लो कि ये आशा और उपचार के परे है। अब हम अगले छोटे से भाग में हैं। छह वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन सात है जिनसे उसको घृणा है। मुझे उन चीजों से घृणा करनी चाहिए जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, और उनसे दूर रहने का यत्न करना चाहिए। इन सात चीजों को देखना अनिवार्य है कि इन सात चीजों के कसूरवार हम ना हो। नीति वचन 6:17, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। बाइबल कहती है नीति वचन 16:18, विनाश होने से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। ये घमंड से चढ़ी हुई आंखें हैं। बाइबल में कितनी बार कहा गया है कि हम अपने आप को दीन करें तो हम ऊंचे उठाए जाएंगे। दूसरी चीजें जिनसे परमेश्वर घृणा करता है वे है नीति वचन 6:17-19 तक, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, किसी के विरुद्ध झूठ का समर्थन करना, और अंत में नीति वचन 6:19 में आगे लिखा है भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, बंटवारा और विभाजन जो प्रायः कलीसिया में देखा जाता है, परमेश्वर इसे घृणा करता है। पौलुस कहता है रोमियो 16:17, जो लोग फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। परमेश्वर भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाले मनुष्य से घृणा करता है। भजन संहिता 133:1, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये परमेश्वर को सम्मानित करता है, परंतु फूट डालने वाले से परमेश्वर घृणा करता है। अगले भाग में माता पिता की बात सुनने और उनके परामर्श को मानने के बारे में छोटे छोटे निर्देश है। नीति वचन 6:20-23 तक, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वो तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। माता पिता की सलाह और परामर्श महत्वपूर्ण है। निश्चय ही वे ईश्वर भक्ति माता पिता होने चाहिए। उनका परामर्श एक दीपक के समान है। वो आपके रास्ते के लिए प्रकाश है। अगले पदों में वो फिर से बुरी स्त्री के बारे में कहता है, वो बुरी स्त्रियों के प्रति चेतावनी देता है। नीति वचन अध्याय 6:24 से लेकर 25 तक, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वो तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए, उसका दिखावा झूठ है। नीति वचन 6:26 से लेकर 35 तक, क्योंकि वेश्या गमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन को आहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वो दंड से ना बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वो पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो परस्त्री गमन करता है वो निरा निर्बुद्ध है। जो अपने प्राणों को नाश करना चाहता है वो ही ऐसा करता है, उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नाम धराई कभी न मिटेगी, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वो कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वो घूस पर दृष्टि ना करेगा और चाहे तू उसको बहुत कुछ दे तो भी वो ना मानेगा। पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बच, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर। नए नियम में यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में व्यवस्था के बारे में कह रहा था कि उन दिनों में उनको जो सिखाया जा रहा था परमेश्वर के द्वारा, इस व्यवस्था को देने का उद्देश्य अलग था। वो बहुत से उदाहरणों से दिखा रहा था कि जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी, परमेश्वर मनुष्य के हृदय के विचार में रुचि रखता था, न कि मनुष्य के कार्यों से, क्योंकि गलत धारणा रखकर भी मनुष्य सही कार्य कर सकता था और सही धारणा रखकर गलत कार्य कर सकता था। अतः परमेश्वर मन को देखता है। व्यवस्था कहती है, और फरीसी भी ये सिखाते थे कि व्यवस्था ये कहती है, निर्गमन अध्याय 20:14, तू व्यभिचार न करना। लेकिन यीशु ने कहा, मती अध्याय 5:28, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। दूसरे शब्दों में मनुष्य की आंतरिक मनोदृष्टि महत्वपूर्ण है, इसलिए सुलेमान ने कहा, नीति वचन 4:23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। याकूब हमें बताता है, याकूब 1:13-15, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये न कहें कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। यदि तुम उसका अनुसरण करोगे तो वो पाप में ले जाएगी। पाप मन से आरंभ होता है। पौलुस तिमोथियुस से कहता है, 2 तिमोथियुस 2:22, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, क्योंकि वो मनुष्य के प्राण को नरक में ले जाएगी। उन अभिलाषाओं से भाग जैसे यूसुफ ने किया, वहां से जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ, नहीं तो संभलना बहुत कठिन होगा। मनुष्य जितनी तेजी से भाग सकता है भाग जाए।